एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो अमेरिका के सबसे बड़े वादे पर, जिसे अमेरिकन ड्रीम कहते हैं, उसी पर एक गहरा सवाल उठाती है। ये पूछती है कि भाई, क्या ये सपना वाकई सबके लिए है या फिर कुछ लोगों की कीमत पर बना है?
बिल्कुल, और ये सवाल उठाया है ताने हीसी कोट्स ने। उनकी किताब है बिटवीन द वर्ल्ड एंड मी, बहुत ही चर्चित, बहुत प्रभावशाली।
हाँ, हमारे और दुनिया के बीच।
जी, और ये किताब असल में, जैसा आपने कहा, लेखक का अपने किशोर बेटे के नाम लिखा एक लंबा सा पत्र है।
पर ये सिर्फ एक पत्र जैसा नहीं लगता है ना, इसमें तो इतिहास है, पहचान, डर, और मतलब अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति होने का क्या मतलब है, उस पर एक बहुत ही तीखा, बहुत निजी चिंतन है।
सही कहा। और भले ही ये अमेरिकी संदर्भ में है, पर जो मुद्दे ये उठाती है, जैसे सिस्टमैटिक भेदभाव, इतिहास का बोझ, पहचान के सवाल, वो तो आज दुनिया भर में गूंजते हैं।
हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारा अतीत, मतलब गुजरा हुआ कल, आज की सच्चाइयों को गढ़ता है।
बिल्कुल, और कैसे ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं ना, तरक्की, सपना, वो ज़मीनी हकीकत से कितनी अलग हो सकती हैं।
तो चलिए इस किताब की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं।
ज़रूर।
तो पहले ये समझें कि ये तानेहीसी कोट्स हैं कौन, मतलब सिर्फ एक लेखक तो नहीं है वो?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अमेरिका के आज के समय के, आप कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में से एक माने जाते हैं। अवार्ड विनिंग पत्रकार हैं, लेखक हैं, खासकर द एटलांटिक मैगजीन के लिए जो उन्होंने लिखा है।
हाँ हाँ सुना है मैंने।
और नस्लवाद पर उनका जो बेबाक लेखन है, उसके लिए वो जाने जाते हैं।
अच्छा, और उनकी आवाज में खास बातें हैं ना, ऐसा लगता है कि वो कहीं दूर बैठकर नहीं लिख रहे।
सही पकड़ा आपने, उनका नजरिया उनके अपने अनुभवों से बना है। वो वेस्ट बाल्टीमोर की सड़कों पर पले बढ़े, एक ऐसा इलाका जहां डर और हिंसा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे।
ओहो,
और उनके पिता, जो पहले ब्लैक पैंथर सदस्य थे और एक प्रकाशक भी, उन्होंने कोट्स को बहुत कम उम्र में ही अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास और साहित्य से मिलवा दिया था।
हाँ, और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है किताब में बार बार। मक्का कहते हैं वो उसे।
जी, मक्का, वो उनके बौद्धिक सफर में एक बहुत बड़ा मोड़ था। वहां उन्हें अश्वेत इतिहास और विचारों की जो विशाल समृद्ध दुनिया है, उसका एहसास हुआ। तो उनका लिखना सिर्फ निजी कहानी नहीं है, वो गहरा ऐतिहासिक शोध और बहुत तीखी सामाजिक आलोचना का मिश्रण है।
तो मतलब उनकी बात में वजन इसलिए है क्योंकि वो खुद उस अनुभव से गुजरे हैं।
बिल्कुल, उनकी विश्वसनीयता किसी डिग्री से नहीं आती, वो आती है अमेरिकी नस्लवाद की मशीनरी को समझने के उनके गहरे व्यक्तिगत और बौद्धिक संघर्ष से। और ये संघर्ष सिर्फ अपने लिए नहीं है।
हाँ, अपने बेटे के लिए भी।
जी, अपने बेटे के भविष्य के लिए भी। और यही बात इस किताब को इतनी ताकतवर बनाती है।
तो ये किताब बिटवीन द वर्ल्ड एंड मी आखिर है क्या चीज? आपने कहा बेटे के लिए पत्र है।
हाँ, उनके 15 साल के बेटे समोरी के लिए। लेकिन ये सिर्फ कोई नसीहत वाली किताब नहीं है, ये एक संस्मरण है, यादें हैं, अमेरिकी इतिहास पर एक नजर है, समाज की आलोचना है,
और एक पिता की कोशिश है।
हाँ, सबसे बढ़कर एक पिता की कोशिश है अपने बेटे को उस दुनिया की सच्चाई के लिए तैयार करने की, जिसमें उसे एक अश्वेत व्यक्ति के तौर पर जीना है।
किताब का जो मुख्य विचार है वो तो काफी मतलब झकझोर देता है।
बिल्कुल, कोट्स का तर्क है कि अमेरिका का वो मशहूर सपना, वो सुख समृद्धि सुरक्षा का वादा, वो असल में अश्वेत लोगों के शरीर और उनके श्रम की सदियों की लूट और विनाश पर बना है।
सदियों की लूट और विनाश पर, ये तो बहुत भारी बात है।
है। वो कहते हैं कि नस्लवाद सिर्फ कुछ बुरे लोगों की सोच नहीं है, वो अमेरिकी समाज की नींव का हिस्सा है, गुलामी के दौर से लेकर आज तक।
और फिर वो अपने बेटे से और हम सब से भी एक बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं।
हाँ,
है ना?
हाँ।
कि एक ऐसे देश में जिसकी बुनियाद ही अश्वेत शरीर को कंट्रोल करने, उसे नष्ट करने के अधिकार पर रखी गई हो, वहां इज्जत और उम्मीद के साथ कैसे जिया जाए? कैसे?
और कोर्ट्स कोई आसान जवाब नहीं देते, कोई झूठी दिलासा नहीं, वो ऑप्टिमिज्म, मतलब आशावाद की जगह जागरूकता, कॉन्शियसनेस पर जोर देते हैं।
अच्छा।
वो अपने बेटे से कहते हैं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि तुम दुनिया की सच्चाई को देखो, उसकी पूरी कड़वाहट और खूबसूरती के साथ समझो। किताब में वो अपनी निजी जिंदगी की घटनाओं को अमेरिकी नस्लीय हिंसा के लंबे इतिहास से जोड़ते चलते हैं।
ये किताब चैप्टर्स में नहीं बटी है ना, तीन हिस्से हैं शायद।
हाँ, तीन मुख्य हिस्से हैं।
हाँ।
पहला हिस्सा डर और उस सपने के भ्रम पर है जिसकी हम बात कर रहे थे।
हाँ।
कोट्स अपने बचपन का जिक्र करते हैं बाल्टीमोर में,
जहाँ डर हर तरफ था जैसा आपने बताया।
जी, सड़कों पर दूसरे बच्चों से पिट जाने का डर।
हाँ।
और पुलिस से हिंसा का डर।
हाँ।
जिन्हें वो रक्षक नहीं मानते थे,
बिल्कुल,
बल्कि एक बाहरी कब्जा करने वाली ताकत के रूप में देखते थे।
यही वो दो खास कॉन्सेप्ट्स लाते हैं, शरीर और सपना।
बिल्कुल, द बॉडी और द ड्रीम। अश्वेत लोगों के लिए जिंदगी सबसे पहले और सबसे ज्यादा उनके शरीर में जी जाती है। ये शरीर कमजोर है, वल्नरेबल है।
हाँ।
इसे कंट्रोल किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इतिहास गवाह है। ये सिर्फ कोई आइडिया नहीं है, ये एक फिजिकल सच्चाई है जिसका एहसास उन्हें हर पल रहता है।
और इसके ठीक उलट है सपना,
वो आरामदायक सुरक्षित लगने वाली जिंदगी, ज्यादातर सफेद सबर्बन जिंदगी।
हाँ।
और कोट्स का तर्क है कि ये सपना देखने वाले लोग असल में एक तरह की अज्ञानता में जीते हैं। वो इस सच्चाई से आंखें मूंदे रहते हैं कि उनका ये आराम, उनकी ये सुरक्षा,
वो अश्वेत शरीरों की सदियों की लूट, जिसे वो प्लंडर कहते हैं, उस पर बनी है।
बिल्कुल, वो कहते हैं कि जो लोग खुद को श्वेत मानते हैं वे इस अज्ञानता का, इस इग्नोरेंस का फायदा उठाते हैं।
ये तो बहुत तीखी आलोचना है उस सिस्टम की, जो कुछ लोगों को सपने देखने देता है और दूसरों के लिए वो सपना एक डरावनी हकीकत बन जाता है।
हाँ, इस पहले हिस्से में वो डर की उस भावना को बहुत गहराई से स्थापित करते हैं जो अश्वेत जीवन का एक स्थायी हिस्सा रही है।
तो बाल्टीमोर की गलियों के इस डर से निकलकर कोट्स एक ऐसी जगह पहुंचे जिसने उनकी सोच बदल दी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मक्का। ये किताब का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा है।
हाँ, मेरे ख्याल से भी। हार्वर्ड जो एक हिस्टोरिकली ब्लैक यूनिवर्सिटी है, वो कोट्स के लिए एक तरह से बौद्धिक और सांस्कृतिक जागरण का सेंटर बनी।
अच्छा, कैसे?
यहाँ आकर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ब्लैक डायस्पोरा, मतलब दुनिया भर में फैले अश्वेत समुदाय, कितने विविध हैं, कितने समृद्ध हैं बौद्धिक रूप से। वो इतिहास, साहित्य, संगीत, अश्वेत अनुभव के हर पहलू में डूब गए।
तो उन्हें लगा जैसे वो घर आ गए हैं, एक सुरक्षित जगह।
कुछ हद तक हाँ, एक ऐसी जगह जहां उनकी पहचान को पूरी तरह से स्वीकार किया जा रहा था। लेकिन ये बौद्धिक स्वर्ग भी अमेरिका की हिंसक सच्चाइयों से अछूता नहीं था, और यही इस भाग की और शायद पूरी किताब की सबसे दर्दनाक और केंद्रीय घटना सामने आती है।
आप प्रिंस जोन्स की बात कर रहे हैं?
हाँ, प्रिंस जोन्स, हार्वर्ड में कोट्स के एक बहुत होनार प्यारे दोस्त, अच्छे संपन्न परिवार से, स्मार्ट, जिम्मेदार, मतलब वो सब कुछ सही कर रहे थे जो अमेरिकी समाज सफल होने के लिए कहता है।
फिर उनके साथ क्या हुआ?
उन्हें एक पुलिस अधिकारी ने गोली मार दी।
क्या, क्यों?
बिना किसी उकसावे के, पहचान में गलती का बहाना बनाया गया, और उस अधिकारी को कभी सजा नहीं हुई।
हे भगवान!
ये घटना कोट्स के लिए एक झकझोर देने वाला पल था। इसने उस मिथक को तोड़ दिया कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवार से हैं, सही बर्ताव करते हैं, तो आप नस्लीय हिंसा से बच सकते हैं।
ये तो वाकई भयानक है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम के लिए प्रिंस जोन्स की सारी काबिलियत, उनका अच्छा होना, सब बेकार था।
बिल्कुल, कोर्ट्स के लिए ये इस बात का सबूत था कि सिस्टम की नज़र में प्रिंस का शरीर आखिर में सिर्फ एक और अश्वेत शरीर था जिसे बिना किसी जवाबदेही के नष्ट किया जा सकता था। ये घटना कोर्ट्स के केंद्रीय तर्क को और पुख्ता करती है कि नस्लवाद कितना गहरा है, कितना सिस्टमैटिक है। इसने उनके मन में यह सवाल और गहरा कर दिया कि इस सच्चाई के साथ जिया कैसे जाए।
और यही सवाल हमें किताब के तीसरे और आखिरी हिस्से तक ले जाता है। प्रिंस जोन्स की घटना, मक्का का अनुभव, इन सब के बाद कोट्स अब एक पिता हैं।
जी, ये हिस्सा पितृत्व, चेतना और इस मुश्किल सच्चाई के साथ जीने के संघर्ष पर है।
एक पिता के तौर पर वो अपने बेटे समोरी को क्या संदेश देना चाहते हैं फिर?
यह हिस्सा बहुत मार्मिक है, दिल को छूने वाला। कोट्स उन चिंताओं, उन जिम्मेदारियों से जूझते हैं जो अमेरिकी इतिहास की छाया में एक अश्वेत बेटे को पालने के साथ आती हैं।
जैसे कि उसे सुरक्षित कैसे रखें, जबकि पूरी सुरक्षा मुमकिन ही नहीं है।
हाँ बिल्कुल, किताब में एक घटना का जिक्र है। वो मूवी थिएटर में अपने बेटे को किसी श्वेत महिला से ऊंची आवाज में बात करने से रोकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है।
ओह, ये दिखाता है कि खतरा कितना अनप्रिडिक्टेबल है, हर जगह है।
बिल्कुल, तो सवाल यह है कि क्या वो उसे डराकर रखना चाहते हैं
या कोई उम्मीद भी देते हैं?
नहीं, वो उसे डराना नहीं चाहते, लेकिन वो उसे खतरों के प्रति जागरूक करना चाहते हैं बिना उसकी आत्मा को कुचले। वो धर्म या देशभक्ति या ये कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा वाली जो आसान कहानियां होती है ना,
हाँ, झूठी उम्मीदें,
उन सबको खारिज कर देते हैं। वो साफ कहते हैं कि मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि चीजें बेहतर होंगी।
तो फिर रास्ता क्या है? अगर उम्मीद नहीं तो क्या है?
संघर्ष और चेतना, स्ट्रगल एंड कॉन्शियसनेस। वो अपने बेटे को संघर्ष करने और सवाल पूछने के लिए एनकरेज करते हैं।
अच्छा,
लक्ष्य ये नहीं है कि श्वेत समाज तुम्हें अपना लें, लक्ष्य ये है कि तुम दुनिया की वास्तविकता के बावजूद पूरी तरह से सचेत रूप से और ईमानदारी से जियो।
उस संघर्ष में ही सुंदरता खोजना।
हाँ, इतिहास को समझना, परिवार और समुदाय के प्यार को थामे रखना।
और किताब का अंत भी बहुत असरदार है। वो प्रिंस जोन्स की माँ डॉक्टर मेबल जोन्स से मिलते हैं।
जी।
उनकी गरिमा, उनका दुख और फिर भी उनकी मजबूती, वो उस लूट की मानवीय कीमत को सामने लाती हैं जिसके बारे में कोट्स पूरी किताब में बात करते हैं। ये मुलाकात एक तरह से अंतिम सबक है। ज्ञान के साथ जियो, सच्चाई का सामना करो, संघर्ष करो और याद रखो, भूलो मत।
तो इस पूरी मतलब गहरी चर्चा के बाद अगर हमें इस किताब से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो, की टेकअवेज जिसे कहते हैं, तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे अहम बात है अश्वेत शरीर की वल्नरेबिलिटी, उसकी भेद्यता का एहसास। कोट्स बार बार इस पर जोर देते हैं कि नस्लवाद कोई हवा हवाई चीज नहीं है।
वो सपने वाली है कि कैसे जिसे अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है वो असल में एक विनाशकारी भ्रम हो सकता है।
हाँ, ये उस कड़वी सच्चाई से जानबूझकर आंखें मूंदना है कि अमेरिकी समृद्धि और आराम अश्वेत लोगों की पीढ़ियों की पीड़ा और उनके श्रम पर बने हैं।
और ये बात सिर्फ अमेरिका पर ही लागू नहीं होती है ना?
हाँ,
दुनिया में कहीं भी सत्ता और सुविधा के रिश्तों पर सोचने को मजबूर करती है।
बिल्कुल सही। तीसरी अहम बात नस्ल के कॉन्सेप्ट पर ही है। कोट्स एक बहुत शक्तिशाली बात कहते हैं,
नस्ल नस्लवाद की संतान है, पिता नहीं।
हाँ, यानी नस्ली भेद कोई प्राकृतिक चीज नहीं थे, बल्कि रेसिज्म ने पावर को बनाए रखने और लूट को जस्टिफाई करने के लिए नस्ल यानी रेस की कैटेगरीज बनाई।
श्वेत पहचान इसीलिए गढ़ी गई ताकि दूसरों को दबाया जा सके।
बिल्कुल।
और चौथी बात जो शायद सबसे चैलेंजिंग है, वो है आसान उम्मीद को छोड़कर संघर्ष को अपनाने का संदेश।
झूठी आशावाद की जगह यथार्थवाद और चेतना।
हाँ, बदलाव की उम्मीद में बैठे रहने के बजाय आज के संघर्ष में ही मतलब खोजो, सच्चाई का सामना करो।
और आखिर में ज्ञान और चेतना की शक्ति, जिसका प्रतीक वो मक्का यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है।
जी, इतिहास, साहित्य, समुदाय, ये सब मिलकर आपको एक ऐसी पहचान बनाने में मदद करते हैं जो बाहरी दमनकारी नजरिए से आजाद हो। ये जानना कि आप कौन हैं और आपका इतिहास क्या है, ये अपने आप में एक ताकत है।
ये सारे विचार बहुत गहरे हैं और जब हम इन्हें भारत के संदर्भ में देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि कैसे हमारे समाज में भी जो डोमिनेंट नैरेटिव्स हैं, जो मुख्य धारा की कहानियां हैं, वो अक्सर हाशिए पर पड़े समुदायों के अनुभवों और उनके इतिहास को अनदेखा कर सकती हैं या दबा सकती हैं।
बिल्कुल। और कैसे ऐतिहासिक अन्याय आज भी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज मतलब ढांचागत असमानताओं को बनाए रखते हैं।
ये हमें अपने राष्ट्रीय मिथकों पर भी सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है ना?
जरूर। ये किताब हमें अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा क्रिटिकल नजर से देखने में मदद करती है।
किताब में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो सीधे दिल पर लगती हैं, मतलब सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उनकी भाषा बहुत सीधी है, बेबाक है।
हाँ, कुछ पंक्तियां तो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे वो लिखते हैं, अमेरिका में काले शरीर को नष्ट करना पारंपरिक है, ये विरासत है।
बाप रे, ये वाक्य कितना भयानक सच बयान करता है कि अश्वेतों के खिलाफ हिंसा कोई एक्सेप्शन नहीं, बल्कि अमेरिकी इतिहास और उसकी विरासत का हिस्सा रही है।
और वो नस्ल वाली बात?
जी,
नस्ल नस्लवाद की संतान है, पिता नहीं।
जी,
ये पूरी बहस का सिरा ही बदल देता है।
हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिन नस्ली कैटेगरीज को हम इतना नेचुरल मान लेते हैं, वो असल में कितनी बनावटी हैं और सत्ता से जुड़ी हुई हैं।
और अपने बेटे को वो जो सलाह देते हैं वो भी बहुत मार्मिक है। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम अपने सपने में खो जाओ, मैं चाहूंगा कि तुम इस भयानक और खूबसूरत दुनिया के एक जागरूक नागरिक बनो।
झूठे आराम के बजाय चेतना और वास्तविकता का सामना करने की सीधी सलाह, मुश्किल जरूर है पर शायद ज्यादा सच्ची है।
हाँ, ऐसी भाषा पाठक को झकझोरती है। ये आराम देने वाली किताब नहीं है, ये बेचैन करने वाली किताब है।
सही कहा, जो आपको सोचने पर मजबूर करती है।
तो सवाल उठता है कि इन गहरे और कुछ हद तक बेचैन करने वाले विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, इनका हमारे लिए क्या मतलब है?
मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज है एक क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, मतलब एक आलोचनात्मक चेतना विकसित करना। यानी जो बातें हमें बताई जाती हैं, जो कहानियां हम सुनते हैं, उन पर सवाल उठाना, सिर्फ व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को नहीं देखना, बल्कि ये देखना कि क्या सिस्टम में ही कोई दिक्कत है।
सही है, ये हमें खबरों को, राजनीति को, यहाँ तक कि अपने इतिहास को भी ज्यादा गहराई से समझने में मदद कर सकता है।
और दूसरी बात है शिक्षा और संवाद का महत्व। हमें इतिहास का वो वर्जन भी जानने और पढ़ाने की जरूरत है जो अक्सर छुपा दिया जाता है
या नजरअंदाज कर दिया जाता है।
हाँ, सत्ता, इतिहास, भेदभाव, इन पर ज्यादा ईमानदार बातचीत को बढ़ावा देना जरूरी है, खासकर उन आवाजों को सुनना जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है।
बिल्कुल, और पेरेंट्स या टीचर्स के लिए भी यह किताब एक तरह का मॉडल पेश करती है कि कैसे मुश्किल और सेंसिटिव टॉपिक्स पर जैसे नस्ल, जाति, अन्याय, इतिहास, युवा लोगों के साथ ईमानदारी से बात की जाए,
उन्हें सच्चाइयों से बचाने की कोशिश करने के बजाय।
हाँ, उन्हें दुनिया को समझने और उसमें अपना रास्ता बनाने के लिए चेतना और ज्ञान से लैस करना,
यानी डरने की बजाय या आंखें मूंद लेने के बजाय सच्चाई का सामना करने का साहस जुटाना।
बिल्कुल,
इस पूरी चर्चा के बाद अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही, तो वो है कोट्स की अटूट ईमानदारी। वो कोई आसान जवाब नहीं देते, कोई झूठी उम्मीद नहीं बंधाते, लेकिन फिर भी वो निराशावाद में नहीं डूबते। वो संघर्ष के भीतर ही अर्थ, सौंदर्य और संभावना खोजने की बात करते हैं। ये जानना कि हाँ, दुनिया में अन्याय है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसे समझना आपको कमजोर नहीं बल्कि शायद सशक्त बना सकता है।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा घर कर गई वो ये विचार है कि इतिहास शरीर पर लिखा जाता है, ये नस्ल या जाति जैसी चीजों को सिर्फ किताबी बहस का मुद्दा नहीं रहने देता।
हाँ, ये हमें उनके असली फिजिकल जीवन बदल देने वाले परिणामों का सामना करने पर मजबूर करता है।
प्रिंस जोन्स की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और अंत में वो आराम के बजाय चेतना को चुनने की चुनौती, शायद यही सबसे स्थायी विचार है जो ये किताब छोड़ जाती है।
तो ये हमें एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है ना, जिस पर हम सब सोच सकते हैं।
हाँ।
क्या हम अपने समाज की आरामदायक कहानियों और मिथकों पर सवाल उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं जिन पर शायद हमारी अपनी सुविधाएं टिकी हों?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।